ओम शांति। 18 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मनुष्य मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। कौन सा शौक होना चाहिए? कौन सी सर्विस करनी है? मनुष्य से देवता बनाने की, क्योंकि अकेले हम तो वहां नहीं जाएंगे ना, साथी भी तो चाहिए ना। तो हर प्रकार के साथी बनेंगे ना, तो उनको बनाएंगे ना, तो मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। हड्डी धारना पक्की तरह अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान की धारणा हो, जो बाबा हमें समझा रहे हैं वो हमारे जीवन में अच्छी तरह धारण होना चाहिए। प्रश्न, ये आत्मा मैली कैसे होती है? आत्मा मैली कैसे होती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है, कैसे मैली होती है और कौन सी मैल आत्मा पर चढ़ जाती है? उत्तर, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बनती है। जितना देह और देह के संबंधियों को याद करेंगे उतना आत्मा क्या हो जाएगी? मैली हो जाएगी। उसके लिए बाबा ने शब्द दिया हुआ है, मेरा मेरा मैला कर देता है। जिसको भी मेरा कहा मैल चिपका ली, मेरा शरीर मैल चढ़ गई। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा मकान, मेरा जुमान, क्या क्या सामान, जितना मेरा करते जाओ मैला होते जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा किचड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा किचड़ा जो सारी मैल की मां है, देह अभिमान। मेरा देह कहा तो फिर इस मेरी देह के साथ सारे मैल आ जाती है, क्योंकि देह कहने से फिर देह के लिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए लोभ बढ़ता जाता है। फिर जो जिसको मेरा कहा उसमें मोह बढ़ जाता है, ये मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा ये है, तो मेरे में तो मोह होता है। उसको कुछ भी होगा तो दुख होगा। पड़ोसी का हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और का कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तो जिसको मैं मेरा कहता हूं, मेरा बच्चा मर जाए, ये गलत बात, दुख होगा, रोना पड़ेगा। किचड़ा शुरू हो जाता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, ये शरीर पर नहीं चढ़ती। फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। आत्मा मैली हो गई फिर वो सर्विस नहीं कर सकते, सुधरेगा ही नहीं, तो किसी को पसंद आएगा ही नहीं, उसका व्यवहार अच्छा होगा नहीं। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांत। ये गीत बड़ा अच्छा है बच्चे, गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। ज्ञान सुन करके, ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है, कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे, कोई याद करते होंगे मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई, कोयों में कोई आ करके ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है, जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा, बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि नॉलेज किसने सुनाई, कौन है ये ज्ञान सुनाने वाला, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ क्या है? शिरोमणि सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप गीता है। कौन सी गीता? कौन सी गीता? जो शिव बाबा आकर श्रीमत देते हैं, ये है श्रीमत भागवत गीता, भगवान के द्वारा सुनाई हुई गीता। वो व्यास के द्वारा लिखी गई गीता, वो श्री कृष्ण देवता के द्वारा सुनाई गई गीता, और ये है भगवान के द्वारा सुनाई गई गीता। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो देवता है। फिर वो जो गीता है वो सिर्फ व्यास ने लिखी, व्यास ने सुनाई, वहां कोई कृष्ण नहीं। जो दुनिया वाली गीता है वो व्यास ने लिखी, वो कृष्ण ने नहीं सुनाई। वो तो राइटर है, उसने लिख दिया कि कृष्ण ने सुनाया बस। बाकी द्वापर में उस समय पर जिस समय व्यास ने लिखा, ना कोई कृष्ण था ना कोई महाभारत युद्ध हुआ था।
मास्टर जी, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, तो परमात्मा इसमें आते हैं, तो वो कौन हुआ?
कौन?
अल्लाह की ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, वो कृष्ण की आत्मा है।
हाँ,
तो वो आत्मा मतलब वही तो लिखती है, परमात्मा थोड़ी लिखते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा लिखती है।
लिखने का काम ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो उस समय कराते जब ब्रह्मा बाबा का शरीर स्वस्थ नहीं है, वो मुरली सुना नहीं पा रहे क्योंकि उनको दमा हो रहा है। तो वो फिर रजाई में बैठकर ठंड से बचकर, क्योंकि ठंड में आएंगे तो दमा छिड़ेगा, ठीक नहीं, ठंड से बचे रहेंगे तो दमा कंट्रोल में रहेगा। तो फिर वो वहां बैठकर लिख देते थे, और फिर कोई बहन जो भी वहां हो वो सुनाती थी, मम्मा सुनाए या कोई भी बहन जिसको भी वो सुनाएगी। मतलब वो कभी कभी होता था, खासकर सर्दियों के टाइम पर। बाकी नॉर्मली ब्रह्मा बाबा सर्दियों में बॉम्बे चले जाते थे, वहां का वातावरण सर्दियों में ठीक रहता है, तो जिसके कारण वो 2-3 महीने ठंड से बच के वहां रहते थे। खैर, बाकी कृष्ण की आत्मा ने कोई ये मुरलियां लिखी नहीं। मतलब कृष्ण की आत्मा पढ़ती है, ज्ञान को लेती है, अपने आप को तैयार करती है, परंतु जो लिख के जाएगी भी, मान लो सारी मुरलियां कृष्ण ने लिखी, की आत्मा ने लिख भी दी, तो वो भी तो यहीं के यहीं खत्म हो गई। जहाँ दुनिया वाली किताबें शास्त्र खत्म होते हैं, वहाँ बाबा की ये श्रीमत की शास्त्र भी जो बाबा लिखवा रहे हैं ये भी सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल में तो असली लिखावट तो बाबा की श्रीमत पर हम आत्माएं अपने संस्कारों में करते हैं। अभी हर एक आत्मा अपने संस्कार बना रही है, वो जैसे भी संस्कार बनाए। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं कि सर्व शास्त्र मई गीता किसने गाई। उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, उसने कौन सा धर्म स्थापन किया। जब उसने आकर श्रीमद् भागवत गीता सुनाई तो उसने कौन सा धर्म स्थापन किया, कौन सा धर्म स्थापन किया, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और सारे धर्म खत्म किए। और इस दुनिया वाली गीता ने कौन सा धर्म खत्म किया, उसमें लिखा है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो क्या करने आता हूं, अधर्म का विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। अब ये जो गीता लिखी है, इस गीता ने कौन सा धर्म स्थापन किया, कौन से अधर्म का विनाश किया, कौन से अधर्म का विनाश किया, और ही अधर्म बढ़ते आए। इस दुनिया वाली गीता से और ही अधर्म बढ़ते आए। वंडरफुल बात है ना, ये खुद पहले अच्छी तरह बुद्धि में समझना है, फिर जो मिले फिर उसको समझाना है। बाकी गाते जरूर है, गाते जरूर है, हे भगवान आप आओ, भगवान तो जरूर आते ही हैं। नई पावन दुनिया की रचना रचने, दुनिया का ही तो फादर है ना, भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं, सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में, बाकी सब आत्माएं कहां रहती हैं, शांति धाम में। ये परिचय देना पड़े नई दुनिया में, नया भारत राम राज्य, नया भारत राम राज्य। ये दशरथ का बेटा राम नहीं, उसमें सुख है तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जहां बैठे हैं रावण राज्य, क्योंकि राम राज्य चाहते हैं, इसका मतलब राम राज्य नहीं है, क्योंकि यहां दुख है और वहां क्या होता है, सुख होता है। बाप आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है, बाकियों को मिलती है शांति, और जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं उनको मिलता है साथ में सुख। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना, यहाँ अशांति है दुख है तो बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए, ये ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके, अर्थ तो समझा ना सके। इसमें हड्डी धारना चाहिए, इसमें क्या चाहिए, हड्डी धारना चाहिए। जो कोई फिर प्रश्न पूछे, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं, बाबा बाबा आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात नहीं आती, नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका वा ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। श्री कृष्ण देहधारी है, उसका नाम नहीं ले सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ये तुमने किसके लिए कहा पतित पावन आओ, कौन है पतित पावन और वो कब आएगा। पतित पावन वे है, उनको बुलाते हो तो जरूर ये पतित दुनिया है, पतित पावन कोई और है, उसको फिर तुम बुलाते हो तो इसका मतलब कोई और है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, दुनिया भी फिर कोई और होगी। पावन दुनिया किसको कहा जाता है, सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएगा। गीता में भी है, बरोबर भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, दुनिया वाली गीता में लिखा है, इन विकारों पर जीत पाई, काम महाशत्रु है। तीसरे अध्याय में गीता में लिखा, हे अर्जुन उठ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तेरे शत्रु हैं, तो इनको मार, तू इनको मार। ये नहीं लिखा गीता में कहीं भी, उठ दुर्योधन को मार, कौरवों को मार, नहीं। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखलाता हूं। वो कहे कृष्ण ने कहा, तो उनको कहना है कि ये जो कृष्ण सुना रहा है, ये तो वो सुना रहा है जो सूर्य ने मनु को सुनाया था, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया था, और उसके बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो गया था, अब वो उसे दोबारा सुना रहा है। तो इसका मतलब कृष्ण तक भी कभी पहुंचा होगा, तभी तो सुना रहा है। तो कृष्ण से पहले तो सूर्य ने सुना दिया, फिर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये सूरज तो आकाश में खड़ा है, वो कैसे ज्ञान सुनाएगा, वो नीचे उतरकर कैसे आया। वास्तव में ये इस सूर्य की बात नहीं, ये ज्ञान सूर्य परम पिता परम आत्मा की बात है, वही आकर ये ज्ञान सुना सुनाता है, राजयोग सिखाता है। काम महाशत्रु है, ये किसने कहा, फिर पूछो किसने कहा मैं सर्वव्यापी हूं, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, किसके लिए कहा जाता है पतित पावन है। कोई ऐसा शास्त्र बताओ जिसमें लिखा गया हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई शास्त्र नहीं। ये हिंदी में लिखने वालों ने अपनी मर्जी से लिख दिया। किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीता राम रघुपति राघव
राजा
राम। गंगा तो हमेशा है ही, फिर कौन गंगा में स्नान करने से पावन बना? वे कोई नहीं, नई नहीं है गंगा, कोई नई नहीं है, वो चलती आ रही है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमो गुणी तत्व बन जाते हैं, तो उनमें चंचलता आ जाती है, बार कर देती है, अपना रास्ता छोड़ देती है। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती। बारिश भी कम या ज्यादा नहीं, वहां दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं ए भगवान, ए बाबा, कि किसने कहा ए भगवान ए बाबा? किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है, निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेंगे। आत्मा पतित बनी हुई है ये कह नहीं सकते कि अब ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, ये कहना एक ही बात। लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है, बल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की, हमारी बात तो है ही
सेकंड
में बाप का वर्षा मिला, मैं बाबा का बाबा मेरा, सारी जायदाद भी मेरी। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये है जीवन बंधन, समझाना चाहिए। बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तब ही लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही एक है, ये भी समझाना पड़े। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं, वहां दुख का नाम नहीं। ये वे है ही सुख धाम, सूर्य वंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में, द्वापर में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सारे धर्म वाले आते जाएंगे। सारा पार्ट नूंदा हुआ है, क्योंकि धरती टुकड़े टुकड़े हो गई, तो हर टुकड़े पर अपना अपना धर्म पिता हो गया। जिसने अच्छी अच्छी बातें सुनाई वो धर्म पिता हो गया। एक बिंदी जैसी आत्मा में, जैसे बिंदी होती है ना छोटी, बिंदी आत्मा नहीं है, बिंदी जैसी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसे इन आंखों से देख नहीं सकते, उस आत्मा में और परम आत्मा में, दोनों सूक्ष्म अति सूक्ष्म, कितना पाठ नूंदा हुआ। शिव के चित्र भी यहां ये लिखना पड़े, शिव के चित्रों में भी ये लिखना पड़े कि ये दुनिया के और किसी भी शास्त्र के द्वारा इतना अच्छा नहीं समझा। शिव के चित्र में भी बाबा कहते ये लिखना पड़े कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो ना देखे जाने वाला स्टार हूं। ठीक है ना, स्टार की तरह हूं। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, ब्रिकुटी में चमकता है एक अजब। तो वे आत्मा ही ठहरी, तो वे आत्मा ही ठहरी, मैं भी परम पिता परम आत्मा हूं, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूं। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। कौन कौन से गुण हैं? एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति पढ़ समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता है ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी हैं 16 कला संपूर्ण, और चंद्रवंशी हैं 14 कला। वे संपूर्ण सतो प्रदान, और चंद्रवंशी सतो। सूर्यवंशी ही फिर शब्द लगाया है, क्या बनते हैं? चंद्रवंश हर बार बनते, कल्प पहले भी सूर्यवंशी, पिछले कल्प में भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अब बने हैं। हर कल्प में सूर्यवंशी फिर से क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। बलराजाई पद लेते रहते हैं, ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वे सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे? हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है, धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े, फिर वो रुक नहीं सकता, फिर वो रुक नहीं सकता। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी, फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए, किसी को भी समझाना है, भीड़ में समझाना, थोड़ा एक बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, बोलने नहीं देगा। एकांत में किसी को बैठकर समझाओ। हमारे मुख्य चित्र है ही कौन कौन से हैं मुख्य चित्र? झाड़, गोला और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण की जगह राधे कृष्ण का चित्र लगाएंगे तो समझ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि राधे कृष्ण बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण प्रौढ़ हैं। बच्चे को कोई ये नहीं समझेगा कि ये अक्कल देने वाला होगा। भाई बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा क्यों बुड्ढा चुना? क्योंकि बुजुर्ग की बात को माना है। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे, आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है ये कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि जितनी कितनी तीक्ष्ण हो गई है, नंबर वार तो हर क्लास में होते ही है, कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबर वार है। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाला मिल जाए तो वो समझेंगे यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। कोई रॉयल बंदा आया है कोर्स करने के लिए तो उसको समझाने वाला भी अच्छा बंदा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो लिमिट है, कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा लंबी चौड़ी जितनी आ जाओ भाई, सौकार भी गरीब भी सब होते हैं। समझा जाता है इस समय ये किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है, टीचर्स में भी नंबर वार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा है, ये पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा, छोटे सेंटर को बड़ा सेंटर तो कोई टीचर ही बनाएगा। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है, ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब, कब बनेंगे, जब मीठे बात के साथ पूरा योग होगा। तो धारणा भी होगी, फिर क्या होगी, धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बात से पूरा योग लगाना, माया के तूफान तो आएंगे ही, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे। कोई को क्या याद पड़ता है, तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है, ये तो माया करेगी, ये तो माया करेगी। किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर, किचड़ा भी किसके ऊपर पड़ेगा, होली में किचड़ा पड़ता है ना, फिर क्या करते हैं, साफ करते हैं। हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा, बाप को भूले तो पहला नंबर दे अभिमान का किचड़ा पड़ेगा, फिर लोग, फिर मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है, यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे, और घर गए तो रजाई में सो जाते। फिर क्या ने सेंटर खोलना, रजाई जैसी अच्छी और कोई माँ हो ही नहीं सकती। बस एक बार रजाई में घुस जाओ, फिर दुनिया की कोई चीज अच्छी बाबा खुद भी कह देते हैं, तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, तुम यहाँ तो कह रहे हो करेंगे करेंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाएं। शिव बाबा को तो का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं, स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता है, इनाम तो मिलता है। स्थूल सेवा की आपने, उसका फायदा तो मिलेगा। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं परंतु सब्जेक्ट तो है ना, सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब हैं गुप्त, बाकी सब हैं गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है, ये भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था, अच्छा वे कौन सा धर्म था, जब सतयुग था तो वहां पर कौन सा धर्म था, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए, ये पूछो। बौद्धी, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े लेंगे, किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं है, किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानोवाच किसको कहते हो, भगवानोवाच किसको कहते हो। सर्व शास्त्र मई शिरोमणि तो गीता है, भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा। गीता किसने गाई, श्री कृष्ण भगवानोवाच तो हो ना सके, स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है, श्री कृष्ण भला कब आया, अभी किस रूप में है। शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला, श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े हमारी बुद्धि में, जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, इसके लिए हम क्या लिखें। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना, सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बन सके। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया और ये कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया, वहां माया रावण का राज्य ही नहीं, भल वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा हैं, लेकिन हम आत्मा हैं। ये शरीर बूढ़ा हुआ, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है, ये तो ख्याल रहता है ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं, पूरी दुनिया में आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है तो याद भी उनको करना चाहिए, चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं मन मना भाव, गीता में ये किसने कहा कि मन मना भाव। मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, ये कौन कह सकता है। श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके, 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं, तो तुम तुम्हें सब को समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा, तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो, तुम भी बहुत गुप्त हो, तुम भी बहुत गुप्त हो। फल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, क्या करो, ड्रेस बदली करो, फिर सेवा करने जाओ। चित्र सदाव पास में हो, 5 रुपए वाला, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भाव, खुशहाल खुश नसीब भाव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे सौकार आप हो, सबसे सौकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है। उसके आगे कोई खुराक नहीं, सबसे अच्छी खुराक खाने वाला वाले सुख की रोटी खाने वाले आप हो, सुख की रोटी खाने वाले आप हो। इसलिए सदा खुशहाल हो, तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं, तब क्या कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन है, नॉलेजफुल वे है जिसका एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ ना जाए। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।